بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے، اس میں آٹھ باتیں مجھے عرض کرنی. پہلی بات، ناجنس کی صحبت. آپ اس بات کو انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں اس میں بھی لوگ اس چیز کو عیب سمجھتے ہیں اور بڑے تعجب سے لوگ دیکھتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہو کہ ایک ہی جگہ پر کالا کوا بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ سفید رنگ کا بگلا بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھ لیجئے، جامعہ میں کسی درخت پر ایسا ہو جائے تو عصر سے لے کر مغرب تک، حفظ سے لے کر دارالافتاء تک کے طلبا اس انوکھی چیز کو دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں گے. واہرے واہ، آج تو کوئی نئی چیز ہو رہی ہے. جب اس طرح حیوانات کے اندر لوگ اس کو تعجب سے دیکھتے ہیں تو پھر علمی دنیا میں انسانیت کے اندر یہ چیز کتنی جو ہے حیران کن ہوگی کہ ایک طالب علم ہے جو مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اب وہ بیٹھ رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے علم سے دشمنی ہے، جن کا علم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ ہم عصر کے بعد دیکھتے ہیں بعض مرتبہ ہمارے بہت سے طلباء ایسے لوگوں کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ حضرات کا رہنا سراسر آپ کے لیے زہر قاتل ہے. اسی طرح مدرسے کے اندر بھی آپ اپنے ہم جماعت طلباء کے ساتھ رہیں تو اس میں آپ کو علمی استفادے کا، افادے کا موقع ملے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ دارالافتاء کا طالب علم ہے، دورے کا طالب علم ہے، مشکات کا طالب علم ہے اور چکر لگ رہا ہے درجے حفظ اور اردو دینیات اور فارسی کے طلباء کے ساتھ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے آپ حضرات اس طرح کے اپنے عادتوں کو بدلیے کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ کو رہنا. یہ چیز تو قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمائی، سورہ کہف میں ہے، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. دونوں چیز آیت میں بتلائی گئی، کس کے ساتھ بیٹھنا اور کس کے ساتھ نہ بیٹھنا. جو صبح شام اللہ کو یاد رکھے، ہر وقت اللہ کی رضا کے طالب ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہیے. اور کن کے ساتھ نہیں رہنا؟ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جو لوگ اللہ کی یاد سے بالکل غافل، جن کو اللہ نے غفلت دے دی، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو بالکل نہیں رہنا ہے. پھر ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واتبع ہوا، ہر وقت وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. وکان امرہ فرطا، جن کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے دین کے اندر، ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहना। और दूसरी आयत में इत्तकुल्लाह वकुनू मअस्सादिकीन, अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए हुक्म दिया गया। और देखिए, नए कपड़े होते हैं घरों में, कबाट में, अलमारी में रखते हैं, तो कबाट में जो मामूली मामूली छोटे छोटे कीड़े होते हैं उससे बचाने के लिए सफ़ेद रंग की काफूर की गोलियां रखी जाती है। अब ये गोलियां चंद दिनों तक कपड़े के साथ रहती है, फिर आप इस कपड़े को सूंघिए तो इसमें वो काफूर की गोली की खुशबू आपको महसूस होगी। हालांकि कपड़ा भी बेजान, काफूर की गोली भी बेजान, लेकिन बेजान के अंदर सोहबत का असर ये हुआ कि कपड़े ने काफूर की गोली का असर कबूल कर लिया और उसकी खुशबू आना शुरू हो गई। हम तो माशाल्लाह जीरो हैं, जानदार है, अगर गलत लोगों की सोहबत में बैठेंगे, गलत लोगों के साथ उठना बैठना होगा, तो उनकी गलत आदतें बिला इरादा आपकी ज़िंदगी में आना लाजमी है। सोहबत की एक तासीर है, ये छुरी है ना, छुरी प्याज काटो उससे तो उस छुरी के अंदर काफ़ी देर तक प्याज की बदबू रहती है। भले उसने प्याज को काटा लेकिन प्याज ने अपनी तासीर दिखाई कि छुरी को भी बदबू वाला बना दिया। आइंदा अगर उस छुरी से आप सेब काटेंगे तो आप जैसे सलीम उस जौक कहेंगे, अरे ये कैसा सेब लाए हमारे सामने, इसमें तो प्याज की बदबू आ रही है। इससे अंदाज़ा हुआ कि सोहबत, जिनके साथ उठना बैठना, कंपनी जैसों के साथ होगी उसका असर आने ही वाला है। आप तालिब इल्म हैं, तालिबुल अमल हैं, तालीम और तरबियत के लिए आए हैं, आपका उठना बैठना, आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक अपने जैसे लोगों के साथ होना चाहिए। ये बहुत अहम और ज़रूरी चीज़ है इस ज़माने में। दूसरी चीज़, रात की महफिल है। रात का वक्त कितना प्यारा वक्त है। अब इस वक्त के अंदर माशाल्लाह तकरार मुताले के फ़ज़ाइल आप सुन रहे हैं। अब उस रात के वक्त में दारुल इक़ामा में शानदार हरी हरी घास लगी हुई है गार्डन में, और खुली खुली ठंडी हवाएं आ रही बाहर कुर्सियों के ऊपर, कुतुब खाने के बाहर जो कुर्सियां बनी हुई वहाँ पर बैठ करके क्या हो रहा है, महफिलें हो रही है। और उन महफिलों में क्या हो रहा है, गीबतें हो रही है। और गीबत भी किसकी, इन हज़रत मोहतरम साहब की, असातिज़ा की, मतबख नाजिम की, बावर्ची की, जो आपके खुद आपके लिए रात दिन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, उनकी कुर्बान उनकी कीमतों में आप अपना वक्त लगा रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं। इसलिए ये रातों की जो महफिलें हैं ये आपके इल्म का बहुत बड़ा नुकसान करने वाली चीज़ है। ऐसे भी हदीस पाक के अंदर ईशा के बाद बातचीत करने से मना किया गया, फिर उसमें इस्तिस्ना किया गया चंद चीज़ों का। उसमें यह है कि इल्म के लिए, दीन सीखने के लिए अगर आप रात को मजलिस लगा कर बैठे तो ठीक है, लेकिन ये तो जिस मकसद के लिए इजाज़त दी शरीयत ने कि ईशा के बाद इन मकासिद के लिए आप मजलिस लगा सकते हैं, उन मकासिद को छोड़कर महज गपशप के अंदर बैठ करके बातें, ये बहुत बुरी। बाज़ मरतबा ऐसा होता है, हमें बहुत दुख होता है कि हमारे यहाँ दारुल इक़ामा का एक हिस्सा दारुल असातिज़ा के बिल्कुल करीब है, रात के आपकी महफिलों में से इतनी शोर शगब की आवाज़ें उठती है कि हज़राते असातिज़ा मुताले में हो उनको खलल होता है। और रात देर तक आपकी मजलिसों में ऐसा शोर शराबा तो इनके आराम में खलल होता है, इनके यहाँ घरों में आए हुए मेहमान को खलल होता है। वो सोचते हैं क्या हो रहा है मदरसे के अंदर, ये क्या हो गया एकदम अचानक इतनी देर रात में। इसीलिए आप सब हज़रात तोबा कर लीजिए कि रात को हरगिज़ इस तरह गपशप की मजलिस कायम नहीं करेंगे, कहिए इंशाल्लाह कि हरगिज ऐसी मजलिसों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तीसरी चीज असबाक की पाबंदी। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, एक दिन का सबक बिला वजह नागा किया 40 दिन की बरकतें ख़त्म हो जाएगी। आप असर के बाद की किताबों में सुनेंगे हमारे असलाफ के हालात को, उनके वाकयात को। बारिश गिर रही है तो किताबों को किस किस तरह लेकर के लेकिन सबक में हाजिरी दे रहे, न उनको शादी से कोई मतलब, न उनको जो है कोई और तकरीबात से मतलब। देखो आप अपनी कीमत दुनिया को बतलाइए तो दुनिया आपकी कदर करेगी। हज़रत मौलाना अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे हमारे गुजरात के दावत तबलीग के जिम्मेदार, वो एक बात फरमाते थे कि मेरा चौथा हफ्ता महीने में 3 दिन लगाने का तय है। अब इतना पक्का तय है मेरा कि घर में अगर मेरी पोती या नवासे का निकाह होगा तो भी मैं 3 दिन में जाऊँगा। अब सब रिश्तेदारों को मालूम है, तो अब लोगों ने क्या किया कि घर में कोई भी शादी मंगनी तय करनी होती है तो वो कहते हैं कि भाई देखो वो मौल साहब का चौथा हफ्ता ना हो वरना वो निकाह में शिरकत नहीं करेंगे। साफ तौर पर वो पहले से सोच करके निज़ाम बनाते हैं। जब हमने हमारी कदर जतलाई तो फिर दुनिया हमारी इज्जत और कदर करेगी। अब अगर हम ये तय कर ले कि हम सबक का नागा नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, तो अब रिश्तेदार लोग भी कहेंगे इनको शिरकत, इनकी शिरकत है, इनको बुलाना है शादी में, तो इनकी छुट्टी देखो कब इनके मदरसे में छुट्टियां होगी, या ये कि कम से कम जुमा के दिन। ये क्या हुआ कि भाई शादी, और शादी भी कैसी मालूम है, 18 मील दूर की रिश्तेदारी, ये मेरे दादा के भाई के पोते की बेटी का आज निकाह हो रहा है और उसमें मेरे बगैर तो निकाह होने वाला है। कभी आप ना जाके देखो अगर निकाह ना होता हो। ठीक है, और ताज्जुब की बात मैं आपको सुनाऊँ। हज़रत मोहतिम साहब एक मरतबा सुनाने लगे, एक तालिब इल्म ने छुट्टी मांगी बहन के इंतकाल की कि मेरी जवान बहन का इंतकाल हो गया। तो हज़रत मोहतिम साहब ने उस बस्ती के एक बड़े आलिम दीन जो हमारे जामिया के पहले शुरा के रुकन भी रह चुके, उनको फ़ोन किया कि आपके आज बस्ती में किसी जवान लड़की का इंतकाल हो गया है। तो कहा हज़रत मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसी कोई बात होती है मैं गांव के अंदर मरजईयत का मकाम रखता हूँ, पता चलता है, लेकिन फिर भी मैं तहकीक करके आपको इत्तला देता हूँ। उन्होंने बेचारे ने बाकायदा पूरे गाँव में तहकीक की, किसी की यहाँ किसी की वफात नहीं हुई थी, किसी की वफात नहीं। अब देखिए झूठ की इंतहा देखिए, आप इंतहा देखिए झूठ की। अब इस कदर झूठ के साथ आपको इल्म कैसे हासिल होगा आप अंदाज़ा लगाओ। फिर उस तालिब इल्म को बुलाकर मोहतिम साहब ने कहा मैंने तहकीक कर ली, किसी का इंतकाल नहीं हुआ, तेरी बहन का किसी का इंतकाल। तो इस तरह छुट्टी के खातिर सगी बहन को मुफ्त में मार डालते बिला वजह। यानी ये आप आपकी इबरत के लिए मैं ये बात सुना रहा हूँ कि झूठ की भी कोई हद। आप हजरात ये तय कर लीजिए कि शादी मंगनी कोई भी कोई चीज़ हो उनको अगर मेरी कदर है मुझे शरीक करना चाहते हैं तो वो मेरी छुट्टियाँ देख करके तय करेंगे तो मैं शिरकत करूँगा, वरना मुझे शिरकत नहीं करनी। मेरी नज़र के अंदर मेरी पढ़ाई की कदर व कीमत ज़्यादा है, आपकी नज़र के अंदर अगर कुरान हदीस फिका दीन का जो इल्म आप हासिल कर रहे आपके दिल के अंदर कदर होगी तो दुनिया आपकी कदर करेगी, वरना फिर जो है आप अपने लिए बहुत कुछ नुकसान करोगे। बहुत से तलबा तो क्या होता है मदरसे में हैं उसके बावजूद बिला वजह घेरा सोए रहते हैं, वो जो नीचे तहखाना है ऐसे भी तहखाने में ठंडक होती है, फिर वहाँ ठंडे पानी का कूलर है, करीब में नाश्ते का माकूल इंतज़ाम है, सारी सहूलियात है और बेहतरीन मस्जिद के पुराने वाले गालीचे वहाँ लगे हुए हैं, नींद भी बहुत बढ़िया और उम्दा आ जाती है, और दारुल इकामा में जो चेकिंग होती है तो वहाँ सोने से नज़र भी नहीं होती है। कितने सारे फ़वाद हासिल है वहाँ सोने में। तो बहुत से तलबा वहाँ पढ़े रहते सबक में हाजिरी नहीं देते, ये चीज़ गलत है। आप असबाब की पाबंदी कीजिए, जो आपको मुफ्ती हुजूर रहमान साहब ने सुनाया, उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता है और उस रिश्ते से जो इल्म आएगा वो शुरुआत से, और आज के ज़माने में कहो कि गूगल के ऊपर जाकर सर्च और रिसर्च करने से वो इल्म आपको हासिल नहीं हो सकता जो एक उस्ताद के दर्स की बरकत से आपको हासिल होगा। इसीलिए ये काम आपको करना है। देखा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म दिया गया तो कैसी सख्ती से इब्तिदा की गई। जिब्रील अमीन आए अव्वल वही के वक्त, और जिब्रील अमीन के जरिए आपको बिछवाया गया। मालूम है जिब्रील अमीन की ताकत? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाहत का इजहार फरमाया तो एक पर का एक किनारा मशरिक को मगरिब को घेरे हुए था। एक पर का एक किनारा मशरिक से मगरिब को घेरे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख करके बेहोश हो गए। जब होश आया तो हजरत जिब्राइल ने कहा, ऐसे ऐसे अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं, और उस पर के एक किनारे के ऊपर एक तफसीरी कॉल के मुताबिक 5 शहरों को, सदूम आमूरा ऐसे 5 शहरों को अपनी परों के एक किनारे के ऊपर उठा करके पलट मारा हजरत जिब्राइल अमीन ने। इतने बड़े ताकत वाले फरिश्ते, अल्लमहू शदीदुल कुवा, बड़े ताकत वाले फरिश्ते हजरत जिब्रील, उनके जरिए से बिचवा करके फिर इल्म की शुरुआत हुई। इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। तो ये तो इस राह के अंदर लाजमी चीज है। इसीलिए मैं आप हजरात से ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि असबाब के अंदर आप बिल्कुल गैरहाजिरी न करें, पाबंदी करें। चौथी चीज़, मेहनत से पढ़ना। वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह उनके लिए राहों को खोलते हैं। बिकद्रिल कद्दी तुक्तसबुल माली मन तलबल उला सहिरल लयाली, जितनी मेहनत करोगे इतने ऊंचे मकामात को पाओगे, और रातों को जागो तो ऊंचे ऊंचे मकामात आपको हासिल होंगे। तो ये तो इल्म के अंदर मेहनत, इसमें अजर भी है, सवाब भी है, नेकी भी है और फायदा भी है। और देखो, मेहनत करके आप लोग पढ़ोगे, अगर खुन जहन भी होगा तो अभी अल्लाह ताला रास्ता खोलेंगे। अल्लामा तफ्ताज़ानी का वाकया तो आप लोग वहाँ मुकदमे में सुनेंगे। मेहनत करते रहे, एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से असबाब बन गए, जहन खुल गया। इसीलिए आप हिम्मत ना हारे, मेहनत से पढ़े, अल्लाह रास्ता खोलेंगे। पांचवी चीज़, मोबाइल के नुकसानात। ये एक मौजू ऐसा है कि मैं आपके सामने घंटों उस पर तकरीर कर सकता हूँ। मुख्तसरन कहूँ, हमारे कदीम ज़माने के अंदर कहा जाता था शराब को उम्मुल खबाइस, लेकिन आज के दौर में उसमें इजाफा करना पड़ेगा कि ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल ये है उम्मुल खबाइस, तमाम गुनाहों की, बल्कि बहुत सारे गुनाहों की जड़ अगर कोई है तो मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। और आपके लिए तो मोबाइल के सही इस्तेमाल की कोई सूरत हमको नज़र नहीं आती। आपका तो मोबाइल को इस्तेमाल करना गलत ही है, आपके लिए मोबाइल के सही इस्तेमाल की कोई शक्ल है ही नहीं। अभी तो आपके लिए मोबाइल का इस्तेमाल ही गलत है। आपको कहो, आईफोन जिसने बनाया है वो साइंटिस्ट ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि मैंने अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में कभी आईफोन दिया नहीं और दूंगा भी नहीं। खुद आईफोन बनाने वाला साइंटिस्ट कहता है, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने इसमें कितना ख़तरनाक जहर भरा है, कितने नुकसानात इसके अंदर है, इसीलिए मैंने आज तक अपनी औलाद को आईफोन नहीं दिया और आइंदा मैं दूंगा भी नहीं। और मैं आपको कहूँ, जिस कदर यकसुई के साथ लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, इतनी यकसुई के साथ आप किताबों में लग जाओ। बस ये है आपका सबसे अच्छा मोबाइल, लोग जितनी यकसुई से मोबाइलों के चक्कर में रहते हैं, आप इतनी यकसुई किताबों में दिखा दीजिए, देखो फिर आपकी कितनी तरक्की होती है, कितनी कामयाबी होती है। बेहयाई सारी दुनिया की इतने से मोबाइल में, फिल्म म्यूजिक गाने इसी मोबाइल के अंदर, और उसके अलावा बेतहकीक बातों को फैलाना, फितनों को फैलाना, ये इस मोबाइल के जरिए से। और जिस्मानी नुकसान, डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसके अंदर जरासीम है, इसीलिए उसके जरासीम से कम बचने की जो तदबीरें बतलाई जाती है कि भाई उसको इतना रखो, इधर रखो, ये करो वो करो। अभी एक दिन अखबार में एक तस्वीर छपी थी, मैंने हजरत को भी तवज्जो, हजरत देखिए तस्वीर से एक सबक सीखने का है। फरमाने लगे क्या इसमें है, का अमेरिका का सदर रूस के सदर के साथ बात कर रहा है। इस वक्त की दुनिया की दो सुपर पावर हुकूमतें उसके सदर एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसका फोटो अखबारात में मीडिया में शाये हो रहा है, तो वो लैंडलाइन, वो ज़मीन वाला जो पुराना फ़ोन था उसके ज़रिए से वो दोनों बात कर रहे थे। क्या मतलब हुआ कि वो समझते हैं कि ये मोबाइल में कितना खतरनाक नुकसान है कि दुनिया के बड़े हुकूमत को चलाने वाले वो भी इसको इस्तेमाल नहीं करते उसके नुकसान से बचने के वास्ते। इसीलिए आप इन मोबाइल को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी इसका ज़माना है ही नहीं आपके वास्ते, ये तो आपको आपके इल्म से महरूम करने की चीज़ है। छठी चीज़ है वक्त की हिफाजत कीजिए, वक्त की जितनी कदर करोगे, अल्लाह ताला ने कुरान में कसम खाई वल असर ज़माने की कसम, हदीस में नेमतान मकबूल उनकी हिमा कसीर मिनन्नास अस्सिहत वल फराग, वक्त की कदर कीजिए। सातवीं चीज़ गुनाहों से तौबा, वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह से डरो अल्लाह तुमको इल्म अता फरमाएंगे। और वत्तकुल्लाह का एक तर्जुमा और मतलब है अपने आप को हराम से बचाओ, अल्लाह तुमको इल्म अता फरमाएंगे। गुनाह के साथ कभी इल्म नहीं आ सकता। जो शेर हम सुनते हैं, शकौतु इला वकीइन लिसूई हिफ्ज़ी फौसानी इला तर्किल मआसी फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाह ला युता लिआसी, ये गुनाह ये हाफ़िज़े को भी कमज़ोर करने वाली चीज़, इल्म से दूर करने वाली चीज़। और मेराज की रात में जो दूध का कटोरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया उसकी ताबीर इल्म से की गई, और दूध जिस बर्तन में होता है उसका निहायत साफ सुथरा होना ज़रूरी, अगर उस बर्तन में मामूली सी भी गंदगी आ जाएगी दूध फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नाकाबिल इस्तेमाल हो जाएगा। तो गुनाह ये तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है इल्म के रास्ते के अंदर, इसीलिए आप गुनाहों से तौबा कर लो, सच्ची पक्की तौबा। दो दो रकात सलात तौबा पढ़ के अल्लाह ताला के सामने गिर गिड़ा करके खूब अपने गुनाहों पर माफ़ी मांग लो, और फिर अच्छे माहौल में हो उसकी कदर करके नेकियों के साथ इल्म के हुसूल में लगो, तो इंशाल्लाह उसका बहुत फ़ायदा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखेंगे। और आठवीं चीज़ है जुमेरात जुमा को इधर उधर न घूमना और इबादात के अंदर छुट्टियों में गुजारना। हमारे उस्ताद मरहूम हज़रत मौलाना वाजिद हुसैन साहब दाम नवर अल्लाह बरकतहू फरमाया करते, इबारत में जब गलती जाती थी तो फरमाते थे भाई ये सर्फ न हुआ कि छोटी छोटी किताबें हैं, जुमेरात जुमा को उसका दौड़ कर लिया करो। ये मिश्कात में पंजुम में फरमाते थे कि जुमेरात जुमा को ना हुआ सर्फ के कवायद का दौड़ कर लिया करो ताकि इबारत के अंदर गलती न जाए। ये जुमेरात जुमा का मशरफ हो गया कि जो किताबें हम भूल गए और ज़रूरी है जुमेरात जुमा उसका मुताला कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, या 24 घंटे की जमात के अंदर चले जाइए या मदरसे में रह कर के शब जुमा है 300 मरतबा दुरूद पढ़िए, सलात तस्बीह पढ़िए, सूरह कहफ पढ़िए, और जल्दी से मस्जिद में आकर अच्छे अमाल में मशगूल रहिए। ये जुमेरात जुमा को घूमना फिरना पूरे हफ्ते के अंदर जो आप पर इल्म का नूर चढ़ाए उसको ख़त्म कर देता है। जो मेरा जुमा का घूमना है, जब हज़रत अकदस शेखुल हदीस उस्तादुना व मुर्शिदना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातहुमुल आलिया नाज़िम तालीमात थे, तो उस वक्त के ऊपर फरमाया करते थे कि हज़रत बहुत माशाल्लाह पूरे दारुल इक़ामा के ऊपर सुबह सुबह अज़ान से पहले तशरीफ़ लाना, तलबा को उठाना बहुत पाबंदी के साथ, तो हर चीज़ पर बहुत गहरी नज़र रहती थी। फरमाते थे कि सनीचर के दिन मैं देखता हूँ कि गुस्ले जनाबत करने वाले तलबा की तादाद हफ्ते में बाकी छः दिन के मुकाबले में ज़्यादा होती है, और उसकी वजह हज़रत फरमाते थे कि मैं वो जानता हूँ कि आप लोग जुमा को बाहर जाते हो और बदनज़रियाँ करके आते हो और फिर उसके साथ साथ फिल्म लघवियात में मशगूल होके आते हो, वो तमाम गंदी चीज़ों का असर फिर यहाँ आकर के शबे शंबा के अंदर होता है। तो पूरे हफ्ते भर के अंदर जो मदरसे के अंदर आप पर नूरानियत चली, वो जुमा के दिन की फजूल तफरीहात बगैर फ़ायदे का घूमना फिरना उसमें सारी चीज़ बर्बाद करके आते हैं। बल्कि बहुत से तलबा के घरों के अंदर टेलीविज़न है, रिश्तेदारों के यहाँ टेलीविज़न है, महलों में टेलीविज़न है, वो जुमेरात जुमा जाकर क्या करते हैं, यही फिल्में देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, गैर महरम औरतों को देखते हैं, वहाँ जाकर के ना जींस यानी जो तलबा आपके जो लोग आपके लायक नहीं उनके साथ बैठते हैं, फिर उनका जहन ख़राब होता है और फिर यहाँ आकर कहते हैं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, कहाँ से दिल लगेगा। इसीलिए जुमेरात जुमा की छुट्टियाँ तो ज़माने तालिब इल्म में जितना आप मदरसे के माहौल में रह के गुजारोगे इतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। हमारे असलाफ तो ऐसे थे कि मदरसे में आए और फिर जो है पूरी तालीम मुकम्मल करके घर जाते थे, इस तरीके के भी होते थे, तब जाकर के काम बनता है। अल्लाह ताला इन हिदायत पर आप हज़रात को मुझको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल करेंगे कि नहीं करेंगे, कुछ ज़िंदगी का रुख बदलोगे कि नहीं बदलोगे। देखो एक वादा करो कि रोज़ाना सुबह के अंदर दुआ करो कि अल्लाह आज का दिन और आने वाली रात मेरी ऐसी गुजरे कि उसमें मैं अपने आप को लघवियात से बचाऊँ। रोज़ ऐसी दुआ का एहतमाम करो, करोगे ऐसी दुआ कि मैं लघवियात से बचूँ पूरे 24 घंटे, रोज़ाना उसका एहतमाम करो अल्लाह ताला से मांगने का। अल्लाह सुबहानहू व तआला इल्म के मवानियात से हिफाजत फरमाएँ, इस राह की रुकावटों से हिफाजत फरमाएँ, और इल्म की जो तरक्की की बातें हैं उसको अपनाने की तौफीक और सआदत अता फरमाएँ। जो शुरू में आपको बात कही गई बहुत अहम है भाइयों, हमारी नज़रों के सामने हालात है मुल्क के आलम के, बहुत गनीमत है, बहुत गनीमत है कि अभी हमारे लिए यकसुई के साथ हुसूल इल्म के मौके और महल्लात मौजूद है, मकामात मौजूद है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। बुखारा की सरजमीन पर, ताशकंद और तिरमिस की सरजमीन पर इस फ़कीर ने अपनी आँखों से देखा है कि वहाँ पर बुखारी शरीफ का नुस्खा देखने के लिए लोग तरसते हैं और उनको बुखारी देखने को नहीं मिलती। उस सरजमीन पर दो नौजवान लड़के जो किसी कॉलेज के अंदर पढ़ रहे थे, वो मेरी शक्ल देख करके अंग्रेज़ी में मुझे सवाल करने के लिए आए कि ये शहर है कि जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, इमाम तिर्मिज़ी रहते थे और यहाँ बड़े बड़े अइम्मा पैदा हुए, कहीं बुखारी का नुस्खा है तो मुझे दिखाओ, हमारी आंखें उसको देखने के लिए तरस रही है। जिस बुखारा शहर में 300 दारुल उलूम थे एक ज़माने के अंदर, 300 दारुल उलूम, इमाम बुखारी की मस्जिद जिसमें बैठकर 90,000 तलबा को उन्होंने पढ़ाया अपनी ज़िंदगी के अंदर, आज उस मस्जिद के अंदर फजर की नमाज में 5 मुसल्ली भी मुश्किल से जमा होते हैं, जबकि जुमा में 25,000 मुसल्ली वहाँ नमाज़ पढ़ने वाले हुआ करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अभी हमारे मुल्क पर बड़ा करम फरमाया है, हमारे मुल्कों के अंदर, कि आज भी यहाँ تعلیم دین کے لیے بہت یکسوئی کے یہ ماحول کے ادارے موجود ہیں، اس کی قدر کر لو، اس کو اللہ کی بڑی نعمت سمجھو اور اس کی صحیح فائدہ اس سے اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ اس شکر گزاری کے اوپر اس کے اندر برکت اور ترقی عطا فرمائیں گے، ورنہ آگے والا جوس بھی ہے، اللہ وہ دن کبھی نہ دکھاوے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.